नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन आर्टली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जीपीयू जेन टू एडवांस्ड रेंडरिंग टेक्निक्स वोल्फगांग एंगेल द्वारा संपादित तकनीकी संकलन है, जो रियल टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेम रेंडरिंग के उन्नत तरीकों पर केंद्रित है। यह किसी एक क्रमबद्ध पाठ्य पुस्तक की तरह एक ही प्रणाली नहीं सिखाती, बल्कि उद्योग के विशेषज्ञों के अलग अलग अध्यायों के माध्यम से व्यावहारिक समस्याओं और उनके समाधान प्रस्तुत करती है। इसमें अडेप्टिव टेसिलेशन, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, प्रोसीजरल टेक्सचर, वल्कन आधारित रेंडरिंग, छायाएं, सामग्री संयोजन, एसिड डिलीवरी और रे ट्रेसिंग जैसे विषय शामिल है। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को केवल दृश्य प्रभावों का सिद्धांत बताना नहीं, बल्कि उन तकनीकी समझौतों तक पहुंचाना है जिनसे तेज, स्थिर और आकर्षक रेंडरिंग पाइपलाइन बनाई जाती है। एंगेल की जीपीयू जेम, जीपीयू प्रो और शेडर एक्स परंपरा के अनुरूप यह संग्रह आधुनिक ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होने वाले उत्पादन उन्मुख विचारों को एक जगह लाता है। इसलिए इसका मुख्य मूल्य किसी तैयार नुस्खे में नहीं, बल्कि अलग परिस्थितियों में अपनाई जा सकने वाली विशेषज्ञ तकनीकों की व्यापक श्रृंखला में है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कंप्यूट शेडर्स के साथ अडेप्टिव जीपीयू टेसिलेशन। पुस्तक का एक प्रमुख रेंडरिंग विषय अडेप्टिव जीपीयू टेसिलेशन है, जिसमें किसी सतह की ज्यामितीय बारीकी हर जगह समान नहीं रखी जाती। मूल विचार यह है कि स्क्रीन पर महत्वपूर्ण, निकट या अधिक वक्रता वाले हिस्सों को अधिक त्रिभुज मिले, जबकि दूर या कम प्रभाव वाले हिस्सों को कम ज्यामिति से प्रस्तुत किया जाए। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थिर रूप से अत्यधिक टेसिलेशन करने पर जीपीयू का समय ऐसे विवरण पर खर्च हो सकता है जो दर्शक को दिखाई भी ना दे। कंप्यूट शेडर्स इस निर्णय प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाते हैं। वे दृश्य की आवश्यकता के आधार पर बारीकी का मूल्यांकन और कार्य वितरण करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि लक्ष्य केवल बहुभुज घटाना नहीं है। बदलती बारीकी से सतहों में दृश्य अस्थिरता, किनारों पर असंगति या फ्रेम दर फ्रेम उछाल जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए अडेप्टिव पद्धति में गुणवत्ता, सिल्वेट की स्पष्टता, मेमोरी पहुंच और प्रोसेसिंग लागत के बीच संतुलन जरूरी है। इस विषय की उपयोगिता विशेष रूप से उन रेंडरों में है जहां बड़े भूभाग, जटिल पात्र या परिवर्तनीय कैमरा दूरी हो। अध्याय का व्यापक संदेश यह है कि ज्यामिति को स्थिर संपत्ति मानने के बजाय स्क्रीन पर उसके वास्तविक प्रभाव के अनुसार नियंत्रित संसाधन मानना चाहिए। दूसरा, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन और प्रोसीजरल टेक्सचर में दृश्य गुणवत्ता का नियंत्रण जीपीयू जेंटू प्रकाश और सतह विवरण को दो जुड़े हुए लेकिन अलग तकनीकी क्षेत्रों के रूप में रखती है। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन का उद्देश्य प्रकाश स्रोत से सतह तक आने वाले योगदान को विश्वसनीय ढंग से दिखाना है। इसके लिए दृश्यता का प्रश्न केंद्रीय है, क्योंकि प्रकाश तभी योगदान देगा जब बीच में कोई अवरोध न हो। ऑल फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट इल्यूमिनेशन पर अध्याय इस समस्या को वेक्टराइज्ड विजिबिलिटी के दृष्टिकोण से देखता है। इसका महत्व इस बात में है कि प्रकाश, छाया और सतह प्रतिक्रिया को सरल अनुमान में समेटने के बजाय दृश्यता की जटिलता को संगठित तरीके से संभाला जाए। दूसरी ओर, नॉन पीरियोडिक टाइलिंग ऑफ नॉइज बेस्ड प्रोसीजरल टेक्सचर्स दोहराव की दृश्य समस्या पर काम करती है। साधारण टाइलिंग में एक ही पैटर्न बार बार उभर सकता है, जिससे प्राकृतिक सतह कृत्रिम लगती है। नॉन पीरियोडिक व्यवस्था इस पुनरावृत्ति को कम करने का प्रयास करती है। दोनों विषय मिलकर दिखाते हैं कि रेंडरिंग में विश्वसनीयता केवल अधिक रेजोल्यूशन का परिणाम नहीं है। प्रकाश की दृश्यता और टेक्सचर की विविधता दोनों दर्शक के सतह संबंधी अनुमान को प्रभावित करते हैं। व्यावहारिक स्तर पर ये तकनीकें ऐसे कलाकार नियंत्रित परिणाम चाहती है जो फ्रेम बजट की सीमाओं के भीतर टिकाऊ भी रहे। तीसरा, डैपल्ड लाइट स्रोतों के लिए सॉफ्ट शैडो अनुमान। छाया अनुभाग में मेरियानो मर्चांते का सॉफ्ट शैडो अप्रोक्सीमेशन फॉर डैपल्ड लाइट सोर्सेज अध्याय विशेष रूप से उपयोगी उदाहरण देता है कि महंगी छाया गणना को लक्षित अनुमान से कैसे बदला जा सकता है। डैपल्ड प्रकाश में पत्तियों, जालियों या अनियमित अवरोधों के कारण रोशनी और अंधेरे के छोटे टूटे हुए पैटर्न बनते हैं। ऐसे पैटर्न में नरम छाया को सीधे खोजने, फिल्टर करने और डेप्थ मैप से नमूने लेने की लागत बढ़ सकती है। प्रस्तावित तरीका डेप्थ ऑफ फील्ड स्प्लैटिंग से प्रेरणा लेता है। यह शैडो मैप में अधिक परिवर्तनशीलता वाले बिंदुओं की पहचान करता है और उन्हें पुनः उपयोग करके प्रकाश स्रोत के आकार का एक अंश प्रक्षेपित करता है। इससे हर पिक्सेल पर समान रूप से महंगा काम करने के बजाय गणना को उन क्षेत्रों की ओर मोड़ा जाता है जहां छाया का स्वरूप वास्तव में जटिल है। इसका दूसरा लाभ कलात्मक नियंत्रण है। उपयोगकर्ता प्रकाश के आकार को परिभाषित कर सकता है, इसलिए अर्धचंद्राकार छाया जैसे प्रभाव भी संभव होते हैं। यह भौतिक रूप से पूर्ण समाधान होने का दावा नहीं करता। इसकी शक्ति नियंत्रित लागत, विशिष्ट दृश्य प्रभाव और नॉन फोटोरियल परिणामों तक विस्तार में है। अध्याय यह स्पष्ट करता है कि रियल टाइम छायाओं में सही प्रश्न अक्सर पूर्ण सटीकता नहीं बल्कि किस त्रुटि को स्वीकार कर बेहतर दृश्य परिणाम और प्रदर्शन पाया जाए होता है। चौथा, वल्कन रेंडर और रन टाइम ब्लटीएफ एसेट डिलीवरी। पुस्तक के 3D इंजन डिजाइन भाग में वल्कन रेंडर लिखने और ग्लटीएफ रन टाइम 3D एसेट डिलीवरी जैसे अध्याय रेंडरिंग को केवल शेडर समस्या मानने की सीमा से बाहर ले जाते हैं। अब करेवास को परे करना। वल्कन जैसे निम्न स्तरीय ग्राफिक्स API में डेवलपर को संसाधनों, कमांड रिकॉर्डिंग और समन्वय के बारे में अधिक स्पष्ट निर्णय लेने पड़ते हैं। इसका लाभ नियंत्रण और संभावित दक्षता है, पर इसकी कीमत अधिक जटिल इंजन संरचना है। एक कुशल वल्कन रेंडरर का अर्थ केवल API कॉल घटाना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें CPU तैयारी, GPU निष्पादन, मेमोरी उपयोग और फ्रेम संगठन एक दूसरे को अनावश्यक रूप से न रोके। ग्लटीएफ रन टाइम एसेट डिलीवरी इस संरचना का दूसरा पक्ष है। रेंडरर को मॉडल, सामग्री, टेक्सचर और दृश्य डेटा समय पर तथा सुसंगत रूप से मिलना चाहिए। मानकीकृत एसेट प्रारूप कार्यप्रवाह में सहयोग दे सकता है, लेकिन रन टाइम पर लोडिंग, रूपांतरण और संसाधन तैयार करने की लागत फिर भी डिजाइन का विषय रहती है। इसलिए ये अध्याय उत्पादन की उस वास्तविकता को दर्शाते हैं जहां सुंदर फ्रेम बनाने के लिए एसेट पाइपलाइन और इंजन वास्तुकला उतने ही निर्णायक है जितने प्रकाश या छाया के एल्गोरिदम। यह दृष्टिकोण उन पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अलर्ट प्रभावों के बजाय एक उपयोग योग्य रेंडरिंग प्रणाली बनाना चाहते हैं। अंत में विशेषीकृत अनुप्रयोगों से रे ट्रस्ट कॉस्टिक्स तक GPU Gen 2 की विषय वस्तु यह भी दिखाती है कि आधुनिक रेंडरिंग एक ही प्रकार के दृश्य तक सीमित नहीं है। रियल टाइम फ्लूइड सिमुलेशन, स्नो डिफॉर्मेशन, सर्जरी सिमुलेशन के लिए वल्कन रेंडरिंग और रियल टाइम रे ट्रस्ट 1 बाउंस कॉस्टिक्स जैसे अध्याय अलग अलग दृश्य आवश्यकताओं को सामने रखते हैं। फ्लूइड और बर्फ जैसे प्रभावों में चुनौती केवल आकर्षक सतह नहीं बल्कि समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। बर्फ का दबना या तरल का बहाव दृश्य को उसके परिवेश और क्रिया से जोड़ता है। सर्जरी सिमुलेशन जैसे संदर्भ में रेंडरिंग की विश्वसनीयता का अर्थ मनोरंजनात्मक यथार्थ से अधिक जटिल संरचनाओं को समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना हो सकता है। रीट्रेस्ट कॉस्टिक्स उस प्रकाश प्रभाव से संबंधित है जिसमें प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद केंद्रित पैटर्न बनाता है। रियल टाइम संदर्भ में इसे सीमित बाउंस के साथ लेना एक व्यावहारिक समझौता है जो व्यापक भौतिक अनुकरण के बजाय दृश्य रूप से महत्वपूर्ण योगदान पर ध्यान देता है। इन अध्यायों की साझा सीख यह है कि तकनीक का चयन प्रभाव के नाम से नहीं उसके उपयोग, समय सीमा और स्वीकार्य त्रुटि से होना चाहिए। पुस्तक इसीलिए विविध है क्योंकि वह रेंडरिंग को एकल एल्गोरिदम नहीं बल्कि सिमुलेशन, प्रकाश, डेटा और प्रस्तुति के परस्पर निर्भर निर्णयों का क्षेत्र मानती है। निष्कर्ष में GPU Gen 2 उन अनुभवी ग्राफिक्स प्रोग्रामरों, इंजन डेवलपरों और तकनीकी कलाकारों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास शेडर्स, रास्टराइजेशन, GPU संसाधनों और रियल टाइम रेंडरिंग की बुनियादी समझ पहले से है। इसे शुरुआती पाठक के लिए क्रमिक परिचय मानना उचित नहीं होगा क्योंकि अलग अध्याय अलग समस्याओं और तकनीकी स्तरों पर प्रवेश करते हैं, लेकिन इसी संरचना में इसकी व्यावहारिक शक्ति है। पाठक किसी एक इंजन समस्या जैसे छाया की लागत, दोहराते टेक्सचर, ज्यामितीय बारीकी, वल्कन वास्तुकला या एसेट डिलीवरी से संबंधित अध्याय चुनकर विचार और कार्यान्वयन दिशा पा सकता है। पुस्तक का बौद्धिक लाभ यह है कि यह उन्नत ग्राफिक्स को केवल चमकदार प्रभावों की सूची नहीं बनाती, यह बार बार लागत, डेटा संगठन, दृश्य गुणवत्ता, कलात्मक नियंत्रण और प्लेटफॉर्म सीमाओं के रिश्ते की ओर ध्यान दिलाती है। समान श्रेणी की सामान्य रेंडरिंग पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर उद्योग विशेषज्ञों के योगदान और उत्पादन उन्मुख विषयों की चौड़ाई में है। इसमें एकीकृत पाठ्यक्रम की सरलता कम है पर वास्तविक समस्याओं की विविधता अधिक है। वोल्फगांग एंगल के संपादन के अंतर्गत संकलित यह सामग्री विशेष रूप से उस पाठक के लिए मूल्यवान है जो स्थापित तकनीकों के बाद के स्तर पर जाकर अपने रेंडरिंग निर्णयों को अधिक ठोस बनाना चाहता है। इसे संदर्भ ग्रंथ की तरह पढ़ना, प्रयोग करना और अपनी पाइपलाइन की सीमाओं के साथ मिलाकर परखना सबसे उपयोगी तरीका होगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं वोल्फगांग एंगल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।